वज़ीराला उमर अब्दुल्ला ने आज किश्तवाड़ जिले के मालवड़वन इलाके का दौरा करके वहां हाल ही में रोनुमा हुई आग की एक वारदात में हुए नुकसान का जायजा लिया। नरेंद्र मोदी ने कौम की शनाख्त को एक नई समत देने में जबान, अदब और रूहानियत जैसे अकदार की करीदी अहमियत को किया उजागर। बीजेपी लीडर नाइब सिंह को हरियाणा के वजीर आला की हैसियत से दिलाया गया हल। 13 अरकानी असम्बली भी वजारती काउंसिल में शामिल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में लीजेंड्स लीग क्रिकेट के इनेकाद को तारीखी नौयत का दिया करार। कहा लीग की बदौलत जम्मू कश्मीर में कौमी और बैन अवी खेल मुकाबलों के लिए होगी राह हमवार। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-आला उमर अब्दुल्ला ने आज किश्तवाड़ जिले के मालवड़वन इलाके का दौरा करके वहां हाल ही में रोनुमा हुई आग की एक वारदात में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मुतासिरा कुंबे से बात करते हुए कहा कि इंतजामी तरजीही बुनियादों पर मुतासरीन के लिए मुफ्त राशन, बालम और आर्जी रिहाइश का इंतजाम करने के लिए इकदाम कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनके तमाम मसाइल हल करने के लिए इंतजामिया पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को फिलहाल 2 लाख रूपये का मुआवजा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पीएम रिलीफ फंड से इमदाद वागुजार करने का मामला भी वजीर आजम के साथ उठाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इस फंड में से भी मुतासरीन के लिए जल्द ही माकूल रिलीफ वागुजार की जायेगी।
आपके रोजमर्रा के मुताबे और मुश्किलात जो है वो हल करने, आपको लकड़ी का इंतजाम करना है, आपके लिए टिन शीट का इंतजाम करना है, आपके लिए एक मुफ्त राशन का हमें इंतजाम करना होगा ताकि ये सर्दियों के महीनों में आप में से कोई भूख से ना मरे। हमने आज ही प्रधानमंत्री वजीर आजम साहब को एक चिट्ठी लिखी है कि आप लोग जो नुकसान हुआ है उसको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत आपको वहां से कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, उसका भी वहां से मुझे उम्मीद है कि ऐलान होगा। फौरी तौर चीफ मिनिस्टर जो मेरे पास जो रिलीफ फंड है उसमें से मैं 2 लाख रुपए का फौरी तौर ऐलान कर रहा हूँ। वजीर आजम साहब का रिलीफ आ जाएगा, फिर जो रकम एमएलए साहब ने ऐलान किया है, जो मैंने अभी ऐलान किया है, जो हुआ है और जो वजीर आजम साहब की तरफ से आएगा, उसके बाद जो फर्ज रहेगा वो फर्ज जो है हम पूरा कर लेंगे ताकि आप लोग अपना घर बसा सकोगे।
नायब वज़ीर-आला सुरेंद्र चौधरी और जिला इंतजामिया के आला हुकाम भी वज़ीर-आला के हमराह थे। इस दौरान बांडीपोरा के डिप्टी कमिश्नर ने आज गुरेज के दावर इलाके का दौरा करके वहां आग से मुतासिर हुए कुंभों की बाज़ाबादकारी के काम का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उन्हें मुनासिब मुआवजा दिया जायेगा। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका हुकाम को नुकसान का मुकम्मल जायजा लेकर फौरी तौर पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जबान, अदब, आर्ट और रूहानियत जैसे सकाफती सुतून किसी भी कौम की शनाख्त को एक समत देने में कलीदी रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत तरक्की की राह पर तेजी से गामजन है और दूसरी तरफ इसकी जड़ें खुद एतमादी के साथ साथ वकार और इज्जत के अकदार में पैवस्त हैं। नई दिल्ली में आज बैन अल-अक़वामी अभिधामा दिवस प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए वजीर अजम ने भगवान बुद्धा की तालीमात का तफसील से तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि भारत मुस्बत इस्लाहाती सफर पर गामजन है जिसे अमृतकाल के नाम से भी जाना जाता है और ये सफर साल 2047 में इख्तिताम पजीर होगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दत के दौरान भारत तरक्की की नई बुलंदियों को छूने में कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्धा के नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए भारत के तरक्याती मंजरनामे में नुमाया तब्दीली वाकई होगी। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो साइंस व टेक्नोलॉजी के शोबे में दुनिया की रहनुमाई करते हुए अपने कल्चर और अकदार को अपनाने में भी फख्र महसूस करें। पाली जबान को क्लासिकल जबान का दर्जा देने का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जबान सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है बल्कि इसमें तहजीब और कल्चर की रूह भी पैवस्त है। उन्होंने कहा कि अभिधामा दिवस हमें सबके साथ हमदर्दी और अच्छाई करने का दर्श देता है और ये दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कलीदी हैसियत रखता है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर नाइब सिंह को आज पंचकुला में एक तकरीब के दौरान हरियाणा के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया। वो दूसरी बार रियासत के वजीर आला बन गए हैं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें ओहदे और राजधारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब में वजीर अजम नरेंद्र मोदी मौजूद थे। वजीर आला के साथ साथ 13 दीगर असेंबली मेंबरान को काबीनी वुजरा और वुजराए मुमलिकत की हैसियत से हलफ दिलाया गया। तकरीब में मरकजी वुजरा राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल और लल्लन सिंह के अलावा आसाम के वजीराला हेमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात के वजीराला भूपिंदर पटेल, महाराष्ट्र के वजीराला एकनाथ शिंदे और उत्तर प्रदेश के वजीराला योगी आदित्यनाथ के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोरंत मोरितानिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मलावी पहुंच गई हैं। एक हफ्ता तवील तीन अफ्रीकी मुल्कों के उनके दौरे का ये आखिरी मरहला है। मलावी में अपने तीन रोज के कयाम के दौरान सदर जमहूरिया मुल्क की आला क्यादत के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगी और वहां भारतीय बरादरी से भी मुलाकात करेंगी। कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोरितानिया के अपने हम मनसब मोहम्मद वलद गजवानी से दो तरफा और वफूद के सतह की बातचीत की थी। बाहमी ताल्लुकात को मुस्तकम करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान चार मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए थे। सदर जमहूरिया ने एक अवामी तकरीब में भी शिरकत की जहां उन्होंने मोरितानिया में आबाद भारतीय बरादरी से भी बातचीत की। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हुकूमत मलेशिया से हासिल की गई टेक्नोलॉजी को बरोयकार लाकर मुल्क में पुलों और मेट्रोज की तामीर के खर्चे में 25% कमी लाने के लिए काम कर रही है। नई दिल्ली में आज नीति आयोग की तरफ से मुनक्कद की गई बैनुल अक्वामी मेथनॉल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि मुल्क में बायोडीजल और मुतबादिल ईंधन की बरामदात के लिए काफी वसाइल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसकी बदौलत 1,50,00,000 नौजवानों को रोजगार हासिल होता है। आज शुरू हुई इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान मेथनॉल की पैदावार और दीगर टेक्नोलॉजी पेशरफ्तों के मुख्तलिफ पहलुओं पर सिरहासिस तबादले ख्याल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों के भरपूर ताउन और पार्टी कारकुनों की मेहनत और लगन के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मरतबा फिर इकतदार में आ गई है। श्रीनगर में आज कई वफूद के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब ये वजीरों असेंबली मेंबरों और पार्टी लीडरों की जिम्मेदारी है कि वो जमीनी सतह पर लोगों की बहबूदी के लिए काम करने के साथ साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने कहा कि यूटी के लोग कई मसलों से दोचार हैं जिन्हें हल करने के लिए फौरी इकदाम करने की जरूरत है। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। पेश हैं बाकी खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि श्रीनगर में लीजेंड्स लीग क्रिकेट की शुरुआत से जम्मू व कश्मीर के खेल मंजरनामे में एक नई शुरुआत हुई है और यहां 36 साल के अरसे के बाद बैनुल अक्वामी क्रिकेट की शुरुआत हुई है। उन्होंने इसे तारीखी नौयत का करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल शाम देर गए बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में खेले गए लीजेंड्स लीग क्रिकेट के फाइनल मैच का मुशाहिदा किया और वहां इरफान पठान, मार्टिन गप्टिल, फिलिमटन मसाकाड़ाज, यूसुफ पठान, केदार जाधव और विनय कुमार के साथ बातचीत की। उन्होंने लीग को कामयाब बनाने के लिए इसके मुंतजमीन को मुबारकबाद दी। एलजी ने कहा कि टूर्नामेंट का इनेकाद जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए फख्र का मकाम है और इससे जम्मू व कश्मीर की साख में मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 बरस के दौरान उनकी तरफ से कयाम अमन के लिए की जा रही कोशिशों के नतीज सामने आ रहे हैं। एलजी ने कहा कि बख्शी स्टेडियम और एमए स्टेडियम की अपग्रेडेशन को यकीनी बनाया जाएगा ताकि यहां कौमी और बैनुल अक्वामी खेल मुकाबले मुनक्कद किए जा सकें। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर के नौजवानों में क्रिकेट के एतबार से काफी टैलेंट मौजूद है और कौमी व बैनुल अक्वामी क्रिकेट मुकाबलों के इनेकाद से उनकी सलाहियतों को मजीद निखार बख्शा जा सकता है और ये नौजवान आगे जाकर मुल्क और यूटी का नाम रोशन कर सकते हैं। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लीजेंड्स लीग क्रिकेट के जीतने वाली और रनर अप टीमों के साथ मुलाकात की। एलजी ने लीग के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने और इस तारीखी टूर्नामेंट के दौरान आला खेल जज्बे का मुजाहिरा करने के लिए खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि कल एक दिलचस्प फाइनल मैच के दौरान सऊदर्न सुपरस्टार्स ने सुपर ओवर में कोणार्क सूर्यास ओडिशा को शिकस्त दे दी। श्रीनगर में 20 अक्टूबर इतवार को कश्मीर मैराथन 2024 का इनेकाद हो रहा है। इस बैनुल अक्वामी मैराथन में लोगों की एक बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। मैराथन को कामयाब बनाने اور اس کے بلا خلال انعقاد کے لیے سری نگر ٹریفک پولیس نے اس روز کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے، جبکہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بھی شہر میں کچھ خاص مقامات نامزد کیے گئے ہیں۔ عام لوگوں سے تلقین کی گئی ہے کہ وہ ٹریفک کی نقل حمل اور پارکنگ کے سلسلے میں جاری کی گئی ایڈوائزری پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مورگن نے کہا ہے کہ نشریاتی اداروں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صحیح جانکاری کے ساتھ ساتھ معیاری مواد لوگوں تک پہنچائیں۔ نئی دلی میں آج انڈیا موبائل کانگریس کے دوران ایک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے نشریات کی اصلاحاتی طاقت اور اس شعبے میں نئی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی کابینہ نے حال ہی میں ملک کے 234 نئے شہروں میں 730 نئے نجی ریڈیو چینل قائم کرنے کو منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نشریات کے شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو کام پر لگانے کی وعدہ بند ہے، تاکہ سب کو اعلی معیار کے میڈیا مواد تک رسائی حاصل ہو سکے۔ سمپوزیم سے اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری سنجے جاجو نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں ریگولیٹری اختراعیت کے اہم رول کو بھی اجاگر کیا۔ حکومت نے ریل گاڑیوں میں پیشگی ریزرویشن کے لیے وقت کی موجودہ حد کو 120 دنوں سے کم کر کے 60 دن کر دیا ہے۔ ریلوے وزارت کی طرف سے جاری ایک سرکولر میں کہا گیا ہے کہ یہ نیا قانون اگلی ماہ کی پہلی تاریخ سے نافذ العمل ہوگا، تاہم اس سال 31 اکتوبر تک کی گئی بکنگز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں غیر ملکی سیاحوں کے لیے 365 دنوں کی حد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج چراری شریف میں زیارت حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پر حاضری دے کر وہاں کئی تعمیری کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے بعد میں افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران عرس مبارک کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے عرس کے دوران زائرین کے لیے تمام تر سہولیات دستیاب رکھنے کی ہدایت دی۔ بڑگام سے ہمارے نمائندے شوکت شاہ نے خبر دی ہے کہ کھائی گام پکھرپورہ علاقے میں آج ایک CRPF گاڑی سڑک سے لڑک گئی، جس کے نتیجے میں 17 CRPF اہلکار زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 اہلکار شدید طور پر زخمی بتائے جاتے ہیں۔ زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے مقامی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے، جہاں سے 10 اہلکاروں کو مزید اور بہتر علاج کے لیے SMHS ہسپتال روانہ کیا گیا ہے۔ جینڈ کے پینشنرز ویلفیئر اینڈ سینئر سٹیزنز فیڈریشن کا ایک اجلاس آج سری نگر میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران مختلف امور پر غور خوض کیا گیا اور سرکار سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ملازمین کے حق میں مہنگائی الاؤنس کی بقایا قسطیں واگزار کرے اور میڈیکل الاؤنس کو بڑھا کر ماہانہ 1000 روپیہ کیے جانے کی بھی مانگ کی گئی۔ سرکار پر زور دیا گیا کہ وہ پینشنرز کے تمام مسائل کو فوری طور سے حل کرے۔ موسمیات محکمے کی پیشن گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.2 ڈگری سیلسیس رہا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر لہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ یہاں کم سے کم درجہ حرارت -0.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔